दान कदरदान, फूलदान रोशनदान और प्रेमचंद की गोदान। कान के पर्दे बांध लीजिए क्योंकि खुल गई है चाय पे खबर की दुकान। आवाज फरोश का नाम अनंत है और जरिए का नाम द क्विंट है।
वाह वाह, सुबह सुबह फालतू शायरी के साथ गुड मॉर्निंग करने का मजा ही कुछ और है। हेलो है, नमस्ते है, लेकिन अब जरा काम की बात हो जाए वरना एडिटर चप्पल मारेगा। चाय पे खबर में आज मायूसी वाली कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं कैदी नंबर 1997 की सजा से। कौन नहीं मालूम आपको, बताता हूँ। गुरमीत राम रहीम सिंह अगले 20 साल तक कैदी नंबर 1997 रहेंगे। आखिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उसके कर्मों को कर्मों की सजा मिली गई। आखिरकार उनके पापों का घड़ा भर के फट गया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने उन्हें 20 साल तक कड़े कारावास की सजा सुनाई है। गुरमीत राम रहीम को फिलहाल अपनी दो शिष्याओं के बलात्कार करने के आरोप में 10-10 साल की जेल की सजा मिली है। ये सजा अलग अलग है, इसलिए टोटल 20 साल हो गए। आगे पता नहीं और कौन कौन से केस सामने आए, इसलिए तब की तब देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोर्ट ने राम रहीम पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सजा सुनते ही गुरमीत राम रहीम फूट फूट कर रो पड़ा और जमीन पे बैठ गया। फिर सिक्योरिटी ने जबरदस्ती कोर्ट से बाहर निकाला तो गुरमीत राम रहीम ने ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत की, लेकिन मेडिकल टेस्ट से पहले चाय पीने की भी मांग की। हालांकि मेडिकल में गुरमीत राम रहीम का ब्लड प्रेशर वो एकदम नॉर्मल निकला। अब गुरमीत सिंह उर्फ कैदी नंबर 1997 इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन तब की तब देखेंगे, अभी तो जेल हो गई है। अब जरा पॉलिटिक्स की बात हो जाए। बड़े दिनों के बाद आम आदमी पार्टी में पार्टी करने लायक कोई खबर आई। देश के 3 राज्यों के 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। ये उपचुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए राहत बन के आई है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बुरी हार के बाद बवाना विधानसभा सीट पर बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर ली है। लेकिन वहीं गोवा की दोनों सीट पणजी और वालापोई पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और आंध्र प्रदेश की नांदेयाल सीट पर सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये तो हो गए रिजल्ट्स। वैसे ये चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए भी थोड़ी बहुत राहत लेकर आए हैं। नहीं, सीट वीट कोई नहीं मिली, कहीं जीते नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब दिल्ली में तीसरे स्थान पे है, थर्ड पोजीशन। ये उसके लिए बहुत संतोष करने वाली बात है क्योंकि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी का वोट शेयर उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन है फिर भी नंबर 3 पे ही। कोई बात नहीं, अगर वो उसी में खुश है तो हमें क्या दिक्कत है। वैसे दिक्कत एक और जगह खत्म होने को आ गई है। डोकलम विवाद आखिर खत्म हुआ। भारत चीन की सेनाओं ने एक दूसरे को ठंड में घूरना बंद किया। काफी टाइम से चल रहा था ये। जून के महीने से जारी डोकलम विवाद पर सोमवार को अचानक कहानी में एक यूटर्न आया। ऐसा माना जा रहा है कि सिक्किम सेक्टर के डोकलम को लेकर चल रहे ये विवाद अब खत्म होने पे आ गए हैं। और सोमवार को पहले भारत ने बयान जारी किया कि दोनों देश इंडिया और चाइना डोकलम से अपनी सेनाएं हटाने पे सहमत हो गए हैं। वहीं इसके कुछ देर बाद ही चाइना ने बयान जारी किया कि भारत ने डोकलम से अपनी सेनाएं हटा दी हैं, लेकिन चीन की सेना वहीं बनी रहेगी और उस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखेंगी। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय का एक और बयान आया और ये साफ किया गया कि बातचीत जारी है, गतिरोध समाप्ति की ओर है। आने वाले दिनों में पता ही लग जाएगा कौन सी आर्मी वहां पे है और कौन सी आर्मी वहां से वापस गई। अच्छा, मायावती ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के मन की बात सिर्फ बात तक ही रह जाती है, वो जमीन पे नहीं आती है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीएसपी की अध्यक्ष मायावती, उन्होंने पीएम मोदी पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया है। मतलब कहते कुछ है और होता कुछ और है, यही मतलब था उनका। मायावती का कहना था कि हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नहीं हटाना ये दर्शाता है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री का मन की बात में ये कहना कि आस्था के नाम पे हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये उन्हें झूठा लगता है। बीजेपी की कथनी करनी में काफी फर्क रहता है और मन की बात में 15 अगस्त को भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन बीजेपी के शासन वाले राज्यों में किसी भी सरकार ने इस पे अमल नहीं किया। वैसे आपको बता दूं कि बेशक इस समय मायावती की बीएसपी के पास लोकसभा में कोई सीट ना हो, राज्यसभा में सिर्फ 6 सीट हो, लेकिन समय वो काफी सारा है। अच्छा, पॉलिटिक्स, बाबागिरी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, इसको साइड रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी पैसे कमाने का एक और तरीका जो सामने आ गया है टेलीविजन पे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9, भारत का सबसे मशहूर टीवी शो है ये तो आप जानते ही हैं। सीजन 9 का पहला एपिसोड कल रात को ऑन एयर हुआ और अभी भी शो के होस्ट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ही हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 9 3 साल बाद आ रहा है। मतलब 8वां सीजन 3 साल पहले 2014 में आया था। नए सीजन में नए रूल्स भी हैं। देखते हैं इस बार कौन बनता है करोड़पति। हम में से कोई बने ना बने, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की फीस इतनी है कि वो शर्तिया करोड़पति बन के जाते हैं। और भाई बनता भी है, इस उम्र में ऐसा शो और इतनी मेहनत, क्या बात है। अच्छा अब जरा एक आखिरी बात बची है मेरे चाय के प्याले में। गुरमीत सिंह उर्फ कैदी नंबर 1997 के केस के चलते आसाराम बापू भी लपेटे में आ गए। देखिए गुरमीत सिंह तो अब जेल के पीछे है, वहीं नाबालिग से रेप के आरोपी एक और बाबा आसाराम, उनके मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, डांट लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि भाई आसाराम बापू के केस की सुनवाई इतने धीरे धीरे कछुए की चाल क्यों चल रही है। ये कछुए की चाल मैंने ऐड किया था, उन्होंने बस पूछा था कि धीमे धीमे क्यों चल रही है। वहीं पीड़ित को अभी तक एग्जामिन ना करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी लताड़ लगाई। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने को बोला है। वैसे गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो सवाल दिमाग में ये उठता है कि क्या अपराधी बाबाओं को बीजेपी सरकार वाले राज्यों से डरना चाहिए या फिर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को अपराधी बाबाओं से डरना चाहिए। कौन किस पे कब भारी पड़ जाए कुछ ठीक नहीं है। बड़ा गंभीर सवाल है ये, आप इस पे अपने दिमाग के दांत चबाइए। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह द क्विंट पे चाय पे खबर में। तब तक के लिए अनंत की ओर से बाय बाय।